श्री भव्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय।
आज दशरक्षण महापर्व का नौवा दिन अकिंचन्य धर्म का दिन है। बहुत लंबी यात्रा के बाद जीवन में घटित होने वाली ये अवस्था है। मुझे लगता है कि अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दोनों ही चीजें ऐसे सहसा घटित नहीं होती है, ये प्रयास से भी घटित होने वाली नहीं है। ये कब हमारे जीवन में घटित होगी, हम बाह्य प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये एक अत्यंत आंतरिक उपलब्धि है। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है या इसको सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है। हम चाहें तो क्रोध के अवसर आने पर क्षमा भाव धारण कर सकते हैं, सम्मान और अपमान के बीच शांत रहे जा सकते हैं और अपने जीवन को सादगी से जी सकते हैं और निर्लोभ होकर के वैसे भी हम रह सकते हैं। सच्चाई भी इतनी ही है संसार की कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इससे बड़ी कोई सच्चाई संसार में नहीं है, वो भी हम जान लेते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को आत्मनियंत्रित भी कर सकता है, अपने जीवन में चाहे तो भारी तपस्या भी कर सकता है और जितना चाहे उतना त्याग भी कर सकता है, लेकिन अपने जीवन में ये फील करना कि यहां संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूं, और अकिंचन ही नहीं, आई एम फुली सेटिस्फाइड, और मैं अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हूं, ये दोनों चीज एक साथ हो, उन निस्संगो निद्वंदो, दो चीजें एक साथ जीवन में घटित हों कि मैं निस्संग हों और निर्द्वंद हो जाऊं, वरना इस संसार में कोई निस्संग हो भी जाए तो निर्द्वंद नहीं हो पाता। मैं कई बार इस गाथा को जब जब याद करता हूं तो लगता है कि निस्संग होने में क्या दिक्कत है, सब छोड़ करके और बाहर खड़े हो गए लेकिन उसके साथ साथ अंतरंग में निर्द्वंद होना, समस्त संकल्प विकल्प के जाल को छोड़ देना, ये आकिंचन्य की साधना है। मेरे और तेरे के भाव से ऊपर उठ जाना, अहंकार और ममकार दोनों से परे की अवस्था है आकिंचन्य। वरना तो बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे भी अकिंचन हैं। एक गरीब आदमी को भी अकिंचन ही कहा जाएगा, लेकिन उतने अकेले से कोई अकिंचन नहीं होता, ना वो अकिंचन धर्म को प्राप्त कर पाता है। अकिंचन धर्म तो अंतरंग में बैठे हुए मेरे तेरे के भाव को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ा, कल त्याग धर्म का दिन था, कल हमसे जितना बना हमने छोड़ दिया, यहां तक कि जो भी शरीर पर था वो भी हमने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ रह गया है क्या? बहुत कुछ रह जाता है। बताइए, संयम तप और त्याग के बाद भी क्या शेष रह जाना चाहिए था? बात खत्म हो जानी चाहिए थी, बात खत्म क्या पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। अभी आचार्य भगवंतों को एक धर्म और कहना पड़ा, अकिंचन धर्म, और अभी भी अकिंचन धर्म के बाद भी इसमें भी ऐसा लगेगा कि जैसे सब तो हो गया, लेकिन अभी एक धर्म और शेष है। थोड़ा सोचें अपन कभी की क्या बात है, किस तरह से ये 10 धर्म रखे गए होंगे, किस तरह से व्यक्ति को परफेक्टनेस की तरफ ले जाया गया होगा। लगता तो ये है कि जैसे सब हो गया, जिस दिन संयम पे सुना था तो लगता था कि हो गया, बस अब संयम जीवन में आ गया और करना क्या है। फिर एक दिन जीवन में संयम के साथ तपस्या भी अंगीकार कर ली तो लगा कि अब कट जाएंगे सारे कर्म तपस्या से। नहीं, उस तपस्या का अहंकार का त्याग भी करना पड़ेगा कि मैं तपस्वी हूं, इस तरह की फीलिंग भी छोड़ना पड़ेगा। और कल जब देते देते हम देते ही चले गए, लेकिन भीतर ये भाव बना रहा कि मैं देने वाला, कहते अभी नहीं आया आकिंचन, इसलिए अभी थोड़ी कमी, मैं देता हूं, तुम होते कौन हो देने वाले? ये अहंकार छोड़ो, था क्या यहां पर जो तुम देने का अहंकार करो? ग्रहण का भाव ही मिथ्या है, इसलिए त्याग भी अहंकार की चीज नहीं है, लेकिन अभी बारीक भीतर पकड़ रह सकती है। ग्रहण के साथ जो त्याग किया गया है, या कि पहले ग्रहण और फिर त्याग किया है, उसमें त्याग करते समय ये भाव छुपा हुआ है कि मैं देता हूं, मैंने छोड़ा है। नहीं, ये कहो कि मैं उन सब से छूट गया हूं, बहुत अच्छा हुआ। तब जाकर के त्याग धर्म के बाद आकिंचन धर्म रखना पड़ा। अभी तो कह रहे थे कि मेरा ये था और मैंने छोड़ा, ठीक है, शाबाशी दे रहे थे कि हाँ तुम्हारा था और तुमने छोड़ा। अब धीरे से कहते हैं कि था क्या तुम्हारा, तुम इससे छूट गए, यही सौभाग्य समझो। अब अपने आप को उस सब से हमने छुड़ा लिया है, अभी तो हम उस सब को दे दे करके और मन में ये संतोष धारण करते थे कि मैं दे सकता हूं, मेरे पास है, मैं छोड़ सकता हूं। कहते तुम क्या छोड़ सकते हो, तुम ही उन सब से छूट जाओ तब कहलाएगा कि हां वास्तव में। आज यही चीज समझने की है कि वस्तुएं छोड़ देना है या कि वस्तुओं से स्वयं अपनी आसक्ति को छुड़ा लेना है। इन दोनों में जितना फर्क है उतना ही त्याग और आकिंचन में फर्क है, इसलिए दो अलग अलग धर्म रखना पड़े। मैं अपने आप को उन सब से मुक्त कर लूं, या कि मुझे मुक्त करना क्या है, मैं उन सब से मुक्त हूं ही, इस बात को फील करूं, इस बात को रियलाइज कर लूं, तब जाकर के जीवन में आकिंचन घटित हो जाए। एक बहुत बड़े राजा थे मिथिला के, मिथिला नरेश को एक बार दाह ज्वर हो गया, सब जानते हैं ये घटना। और वो दाह ज्वर इतना भीषण था कि असह्य वेदना होती थी, कोई जरा सा भी शब्द होता था तो पीड़ा होती थी। सारे उपाय किए जा रहे थे लेकिन कोई उपाय कारगर नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि अगर मल्यागिर का चंदन घिस करके सारे शरीर पर लेप किया जाए तो दाह ज्वर में शांति मिलेगी, लेकिन इतना इतना चंदन कैसे घिसा जाए? तो उनके सैकड़ों रानियां थीं, सबने कहा कि हम अपने हाथ से वह लेप तैयार करेंगे, लाओ चंदन। चंदन लाया गया और लेप बनना शुरू। और जैसे ही लेप बनना शुरू हुआ, इतनी अधिक ध्वनि होने लगी कि राजा के उस दाह ज्वर में और अधिक तकलीफ मालूम पड़ने लगी। क्या कर रहे हो महाराज, आपके लिए लेप बन रहा है, लेकिन आवाज तो इतनी आ रही है, क्योंकि सबके हाथों में 10-20 चूड़ियां तो थी ही, और जब लेप पड़ता था तो उन सबसे बहुत आवाज आती थी। क्या उपाय है? राजा को तो इससे और पीड़ा हो रही, जब लेप बटेगा तब लगाया जाएगा, लेकिन अभी क्या किया जाए? मंत्री ने फौरन जाकर के सब रानियों को सलाह दी और सबने सहर स्वीकार कर लिया और लेप तो बट रहा है लेकिन अब आवाज नहीं आ रही। राजा को एक नई आकुलता शुरू हुई कि मेरे लिए जो लेप बनाया जा रहा था क्या वो बनना बंद हो गया, अब आवाज ही नहीं आ रही। मंत्री ने कहा कि नहीं राजन, लेप तो फिर भी बन रहा है, पर अब हमने वैसी व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी तुमने कि जो अब आवाज नहीं आती, इतनी अधिक आवाज आ रही थी? महाराज, इसमें कोई विशेष करना नहीं पड़ा, सब रानी मां लोग ढेर सारी चूड़ियां पहने थी, उसके टकराने से आवाज आती थी, हमने सबको सौभाग्य के प्रतीक एक एक चूड़ी धारण करने को कहा है, बाकी सब उतार के उनने रख दी है, हाथ में एक सौभाग्य की चूड़ी है, बाकी अब कोई आवाज नहीं। बस इतना पर्याप्त? ये बहुत संस्कारवान जीव पहले जन्म लेते थे जिनको कि इशारा पर्याप्त होता था। हमारे अच्छे संस्कार कम हैं, खोटे संस्कारों की प्रबलता है, इस वजह से कोई हमें बहुत बहुत बार इशारा करता है फिर भी हम अपनी दिशा में एक कदम भी आगे नहीं रख पाते हैं। क्या करें, हमने अपने जीवन में ऐसा पूर्व में पुण्य ही अर्जित नहीं किया कि जरा से सारे से और हम मोक्ष मार्ग पर और चल पड़े। लेकिन वो राजा तो बहुत पुण्यात्मा थे, असाता के उदय में वो वेदना आई थी लेकिन क्षण भर को उनके भीतर ज्योति जाग गई। अच्छा ये बात है, एक एक होने से आवाज नहीं आती, मैं भी अगर एकाकी हो जाऊं तो जीवन के सारे द्वंद मिट जाएंगे, मैं अगर निस्संग हो जाऊं तो निर्द्वंद भी हो जाऊंगा, मेरे सारे संकल्प विकल्प मिट जाएंगे। अगर मैं इस दाह ज्वर से आज रात मुक्त हो गया तो कल सुबह के उगते सूरज के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लूंगा, निर्द्वंद होकर निस्संग होकर के बीचूंगा। बस भैया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्षण भर के अंदर ऐसा विचार आते ही इतनी निर्लिप्तता आ गई कि जो असाता की उदीर्णा हो रही थी वो परिणामों की निर्मलता से धीरे धीरे शांत हो गई, लेप लगाने से शांत हो गई। ऐसा मानना हो तो ऐसा मान लो, या कि असाता का उदय समाप्त होने से शांत हो गई, हम तो यही कहेंगे कि उनके परिणामों में निर्मलता आ गई, आत्मबल जागृत हो गया। उस पुरुषार्थ की वजह से धीरे धीरे रात बीती, जैसे जैसे रात बीती वैसे वैसे दाह ज्वर सुबह तक तो प्रसन्न मुद्रा में उठ करके सबसे क्षमा याचना करके और जैनेश्वरी दीक्षा के लिए निकल गए। वास्तव में तो ये अनुभूति है कि यहां पर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे पृथक एकाकी हूं। लेकिन हम लोग भी एकाकी होने का प्रयास तो करते हैं, होते भी हैं। कई बार हमारे अपने लोग फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। रोज पढ़ते हैं, जब जब भी देव गुरु शास्त्र की पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं। हम जिनको अपना मानते हैं वे एक दिन जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हम बहुत अपने को अकेला महसूस करते हैं। इस तरह के अकेलेपन की अनुभूति तो हमने कई कई बार की। हम तो कई वर्षों तक अपनी बड़ी बहन को भेज करके और दो दो तीन तीन तक खाना नहीं खा पाते थे। हमें याद है अपने जीवन के वो दिन भी। इतना अधिक स्नेह था कि कई वर्षों तक, एकाध बार तो सबको लगता है लेकिन कई वर्षों तक जब जब आकर के और चली जाती थी तब उसके बाद फिर मंदिर में पूजा करते समय रो लेता था यह पंक्ति पढ़ते हुए कि जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल। उस समय यह नहीं जानता था कि आकुल व्याकुल होने से काम नहीं चलेगा। आज ठीक है कि समझ में आती है बात, पर ऐसा एकाकीपन, ऐसा अकेलापन तो वियोग जन्य पीड़ा से युक्त अकेलापन तो कई बार हमने होगा है, और कई बार वह भी अकेलापन हमारे जीवन में आया है जब किसी से हमारी नहीं बनी सो हम एक अकेले रह गए। ऐसे द्वेष पूर्ण अकेलेपन का अनुभव भी हुआ है, एक राग पूर्ण अनुभव हुआ है, एक द्वेष से युक्त अकेलेपन का। भैया काय अकेले हो, अरे को कन्हैया सब देख लो संसार, इसमें क्या झलक रहा है? इसमें ये नहीं समझना कि धर्म झलक रहा है कि को नहीं सब देख लो संसार, मतलब इसका है कि आपको संसार से असंतोष है। असंतुष्ट होकर के अकेले होने वाले बहुत लोग, ऐसे अकेलेपन की चर्चा भी नहीं है ये अकिंचन धर्म में। यहां तो वैसे अकेलेपन की है जिसमें राग द्वेष दोनों से रहित, अपने आप में संतुष्ट, जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं, जिसका कोई अपना सगा नहीं है, क्योंकि जिसके सब अपने सगे हैं उसका कोई अलग से सगा कौन हो सकता है? कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब क्या है? कई अर्थ निकल सकते हैं कि कोई किसी का नहीं है, मतलब क्या करें हम, कोई किसी का नहीं है तो सबका साथ छोड़ दें? नहीं, सबके साथ इस तरह से रहना सीख लें कि सब अपने हैं, इसलिए पर्टिकुलर कोई किसी का नहीं है, स्पेशली कोई किसी का नहीं है, क्योंकि सब सबके हैं। और दूसरी चीज, कोई किसी का नहीं है, इसके मायने सीधा सीधा है कि कोई किसी के सुख दुख में निमित्त बने तो बन सकता है, पर कोई किसी नहीं दे सकता। अपने सुख दुख को भोगने के लिए हम एकदम अलोन हैं, एकदम अकेले हैं। अलोन शब्द और आ गया तो ध्यान आ गया कि इंग्लिश में भी दो अलग अलग शब्द हैं, एलोननेस और लॉनलीनेस। एलोननेस में तो फुली सेटिस्फेक्शन है और लॉनलीनेस में तो सफरिंग, उसके पूरे शब्द नहीं आ रहे मुझे। अकेले हो जाने की पीड़ा जिसमें है वो लॉनलीनेस है कि मैं अकेला छूट गया हूं, कोई नहीं है मेरा, कल तक सब थे मेरे। और एलोननेस में कि आज भी सब मेरे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं सबके बीच भी अपने सुख दुख को अकेले ही भोगता हूं, इसलिए अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। कल तक मुझे अपनों से अपेक्षा थी, आज अपने नहीं है तो मुझे उनसे शिकायत है, आज मुझे पीड़ा है। और यह स्थिति तो कई बार जीवन में बनती है, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि किसी से कोई शिकायत भी नहीं, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है, सब अपने हैं, पर सबको अपने अपने सुख दुख का लेखा जोखा अपने हाथ से लिखना पड़ता है, अपने हाथ से उसे पूरा करना पड़ता है। मुझे याद आता है हमेशा जब अकिंचन धर्म आता है तब मैं ये बात सबको सुनाता हूं। सन 1986 की बात है, आचार्य महाराज की आज्ञा से पहला चतुर्मास गढ़ा कोटा में कर रहा था। एक और महाराज हमारे साथ थे, एक ब्रह्मचारी जी थे। उस समय बहुत अस्वस्थता हो गई, मैंने अपने जीवन में मृत्यु को बहुत निकट से महसूस किया। बहुत निकट से, अब मुझे कोई भय नहीं लगता। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी भी क्षण सांस निकल सकती है, मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि हां किसी भी क्षण, लेकिन अगले क्षण मुझे कुछ करने को शेष ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसी क्षण जो कुछ करना था वो कर लिया है। वो उस समय की फीलिंग है 86 में, और बहुत अधिक अस्वस्थता हुई, 2.5-3 बुखार है, लेकिन इतवार का दिन है इसलिए प्रवचन अनिवार्य है, मेरी हिम्मत नहीं है, पर जो महाराज साथ में उनको कहा कि आप तो सब लोग आए हैं प्रवचन देने चले जाएं, बस ऐसे ही समझिएगा कि यहाँ प्रवचन होना है, और मैं भीतर मानिएगा कि जितने बड़े मंदिर में परिक्रमा है वैसे ही उसमें लेटा हुआ हूं। ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं, उनको भी कहा कि सुनाओ एक हफ्ते में एक दिन तो प्रवचन, मैं आराम से लेटा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो बुला लो। वो भी चले गए, चटाई ओढ़ के आराम से लेटा हूं, मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं। और बुखार बढ़ना शुरू हुआ, एक क्षण को क्या लगा कि कोई होता पास में जो सिर पे हाथ रख के कह देता कि धैर्य रखो, बहुत आवश्यक होता उन क्षणों में, कोई कितना भी पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, एक क्षण को तो लगता है कि कोई सिर पे हाथ रख के कह दे, या कि पास में ही बैठा हो देख ले उसको कि कोई है मेरे पास, मैं अकेला नहीं हूं, अपने सुख दुख को अकेला हम भोगते जरूर हैं, लेकिन हमें चाहिए कि कोई हमारे सुख दुख को देख रहा है। हम अपने सारे दुख सह सकते हैं, अगर कोई हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि मैं जीवन भर दुख सहता रहा, मैं शांति से मर जाऊंगा अगर कोई मुझे सिर पे हाथ रख के ये कह दे कि सचमुच तुमने जीवन भर दुख झेले हैं, बस इतना भर कह दे तो मैं अपने सारे दुखों को भूल करके मरण को प्राप्त हो जाऊं। ऐसी सबके भीतर इच्छा होती है, उस क्षण मेरे मन में भी थी, मैंने चटाई निकाल करके बाहर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था, तब पहली बार जीवन में, और अपने पेन और कागज तो पास में रखने की हमेशा से आदत है चाहे कुछ भी हो, उठा करके लिखा था कि आज तक मैं सिर्फ कहता और सुनता आया हूं कि कोई किसी का नहीं है, आज मैंने अनुभव कर लिया कि अपने सुख दुख के भोगने के लिए जीव यहां अकेला है, इसलिए कोई किसी का नहीं है, क्योंकि वो इतना अकेला है। और दूसरे दिन आकर के सब कुछ ठीक हो गया, 105 बुखार हुआ, उसके बाद ध्यान नहीं है कि क्या हुआ, एक दो क्षण के लिए, और तब तक तो सब लोग पहुंच गए, प्रवचन भी पूरा हो गया होगा, सब संभाल लिया दूसरे दिन आहार के बाद। फिर मैंने कहा अब नहीं लेटूंगा, लोगों ने कहा बस यही तो जिद है आपकी कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, आराम नहीं करते हैं। हमने कहा कल अगर हमारे प्राण निकल जाते तो आप बचा लेते क्या, इसलिए अब किसी के ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसी के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से अपना आत्म कल्याण करूंगा। उसी दिन पहली बार जीवन में कि बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही दोपहर में लेटूंगा, अन्यथा अब रात 9-10 बजे के पहले विश्राम नहीं करूंगा, लेटूंगा भी नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना बहुत आसान है कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन ये फील करना, ये रियलाइज करना, बिना किसी शिकायत के फुली सेटिस्फाइड हो करके ये कहना कि हां सचमुच अपने सुख दुख का स्वामी, अपने सुख दुख का कर्ता, अपने सुख दुख का भोगता मैं स्वयं हूं, क्या ऐसा अभ्यास नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। अभी अपन उसी की चर्चा कर लेते हैं, पर क्या करें, यह धर्म ऐसा है कि थोड़ा सा लगता तो है कठिन, जब जब भी इसको कहता हूं तब तब मुझे भी लगता है कि है तो कठिन, लेकिन इतना कठिन नहीं है, अपन उसको आसानी से समझ सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करें, यही करें कि हम विचार कर ले कि दूसरे की भी तो लिमिटेशंस हैं, हम अपने मन की सारी चीजें दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उसकी भी तो लिमिटेशंस हैं, वो हमारी कितनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, हमारी सारी इच्छाओं को तो कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, तब फिर हम उससे क्यों ज्यादा अपेक्षा रखें। जब हम अकेले हैं तो अपने आप ही अपने सारे काम करने की क्यों ना आदत डाल लेवे, क्यों हम दूसरे पर आश्रित रहें। मुझे तो लगता है कि अकिंचन धर्म हमें स्वाधीन और स्वावलंबी होना सिखाता है। हमारे जीवन में जो है इतना अधिक परावलंबन आ गया है, जरा सी लाइट नहीं है तो अब पंखा नहीं चल रहा है तो तकलीफ झेलना पड़ रही, क्योंकि हमने अपने शरीर को ऐसा बना ही नहीं लिया है कि बिना पंखे के भी हम जी सकें। इतने परावलंबी हो गए हम, इतनी छोटी सी छोटी चीजों की आवश्यकता हमें है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। क्या हम इस तरह दूसरे पर, चीजों पर, व्यक्ति पर, वस्तुओं पर आश्रित होकर के अपना जीवन कहां तक जीते रहेंगे? क्या हम इन सब के बिना भी अपना जीवन नहीं जी सकते हैं? यह विचार हमारे भीतर आना चाहिए कि हाँ, मुझे कम से कम डिपेंड रहना है, सेल्फ डिपेंडेंस हमारे भीतर आ जानी चाहिए। हम स्वाधीन हैं, अपने कर्मों के फल भोगने में ही नहीं, हम इस संसार में भी इस तरह से अपना जीवन जिएं कि सारा काम अपने हाथ से कर सकें, दूसरे की मदद की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन ऐसा सोचने से तो ऐसा लगने लगता है कि इस तरह तो दूसरे की सहायता करना, ये धर्म जिसको माना गया है वो खत्म ही हो जाए। नहीं, आकिंचन के मायने ये नहीं है कि परिवार, समाज, देश और व्यक्ति से कट करके रह जाना। नहीं, सबके बीच इस तरह कुछ प्रेम से रहना कि किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है पर दूसरे की अपेक्षाएं पूरा करने की मेरी पूरी तैयारी है। मुझे किसी से सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने जीवन को ही ऐसा बना लिया है। किसी अहंकार वश नहीं कि मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, धरे रहो अपने पास, ऐसे अहंकार से नहीं, ऐसे द्वेष भाव से नहीं, मैंने तो अपने जीवन को ही इतना स्वावलंबी बना लिया है कि मुझे अब किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मैं तो अब दूसरे की मदद करने के लिए फ्री और हो गया हूं। जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता वो दूसरे की मदद क्या कर पाएगा? जो व्यक्ति, जिसलिए तो अपन बोलते हैं कि स्वयं सेवक कौन है? जो अपना काम अपने हाथ से स्वयं कर लेता है और दूसरे की मदद करने तत्पर है। उसे किसी से, आज के स्वयं सेवकों की छोड़ो, उनके लाने इंतजाम करने पड़ा, स्वयं सेवकों को संग बुलाओ, अगर 10-25 कहूं बाहर से तो उन्हें की व्यवस्था इतनी करने पड़ा कि 25 और उनके स्वयं सेवकों के स्वयं सेवक के लिए। वैसे स्वयं सेवक की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं सेवक शब्द अपने आप में कितना परफेक्ट था कि हम अपने हाथ से अपने सारे काम करके अपना समय बचा करके आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, इसलिए हम स्वयं सेवक कहलाते हैं। हमें आपसे मदद की आवश्यकता नहीं, आपको अगर मदद की आवश्यकता है तो हम आपको भी मदद दे सकते हैं। ऐसी आत्मनिर्भर अवस्था है ये आकिंचन धर्म। हमें अपने जीवन में इसका अभ्यास तो करना ही चाहिए। कोई ऐसी बहुत कठिन चीज नहीं है कि हम इसको अपने जीवन में, अभ्यास में ना ला सकें। मेरे ख्याल से मुझे जो कहना था वो पर्याप्त हो गया, क्योंकि जब जब भी इस आकिंचन धर्म पर बोलता हूं तो लगता है कि बहुत कुछ है जो कि छूट जा रहा है, सूझता भी नहीं है। कितनी बार तो मैं बोल चुका हूं आकिंचन पर, कितनी बार इन सारे धर्मों पर विचार कर चुका हूं, और हर बार यही होता है, जब जब भी आकिंचन धर्म पर कुछ बोलता हूं, कल के दिन हो सकता है ब्रह्मचर्य पर बोलूं और 10-15 मिनट के बाद ही लगने लगे कि बोलने से इस विषय को नहीं किया जा सकता, इस विषय को तो सिर्फ जीवन में अनुभव ही किया जा सकता। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि अपन ने बहुत सारी चीजें जो सीखने समझने की हैं वो आपस में एक दूसरे से सीख समझ करके, सुन करके भी, लेकिन आकिंचन सुन के समझने वाली चीज नहीं है, वो हमारे अपने जीवन में घटित होने वाली चीज है। हम इसको बाहर से बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। निर्द्वंद होने की बाहर से क्या तैयारी करिएगा? ठीक है, हम सारी चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके छोड़ने के बाद भी उनका इंप्रेशन मेरे भीतर बना रह सकता है। उस इंप्रेशन को, उस फीलिंग को कैसे चेंज किया जाए, बस यही छोटे मोटे से उपाय हैं कि हम इस तरह के अपने विचारों को दृढ़ता दें कि हमारे विचारों में ये बात आ जाए कि अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो हमें कोई शिकायत नहीं है, इतना भी आ जाए, क्योंकि कोई कितनी मदद कर सकता है। एक बेटा अपने माँ और पिता की कहां तक सेवा कर सकता है, लास्ट मोमेंट तक दवाई करवा सकता है, पानी पिला सकता है, लेकिन सांस तो नहीं दे सकता, बताइए। ये हर व्यक्ति की लिमिटेशंस है। कोई किसी की कितनी मदद कर सकता है, हम कितनी मदद की अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, लेकिन कर कितनी सकता है कोई, एक सीमा है उसकी। इसलिए हम दूसरे पर डिपेंड ना रहें, हम सब, क्योंकि आनंद तो स्वावलंबन में भी में ही है, और बाकी कहीं कोई, जितना हम पराश्रित हो गए हैं उतनी ही पीड़ा में आज हम अपने जीवन को पाते हैं। पहले बहुत कम चीजों के बिना हमारा काम, बहुत थोड़ी चीजों में हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज हमारे काम चलाने के लिए कितनी ढेर ढेर चीजें चाहिए, कितने लोग चाहिए जो हमारी सुबह से शाम तक मदद पहुंचाते हैं। कभी इस बात का विचार किया हमने, हमारे अपने जीवन के जीने के लिए और हमें कितना कुछ आडंबर करना पड़ता है, उस सब के बिना ऐसा लगता है जैसे जीवन ही नहीं चलेगा। ये सारे विचार हमें अपने मन में ला करके और कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी घटना आपको सुना देता हूं, शायद हो सकता सुना चुका हूं, अगर नहीं भी सुनाई होगी तो भी आप सुन लीजिएगा, और सुनाई है तब भी सुनना तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, सुनी सुनाई भी सुनना पड़ेगी। हाँ, अब उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं, उससे रिलेटेड चीज तो होना चाहिए। क्या हुआ एक बार कि एक बाबा जी राजा के महल के सामने एक पेड़ के नीचे और आकर के रहने लगे। राजा जी रोज देखते थे उनको कि इतनी ठंड के दिन है, फिर भी बाबा जी एक छोटे से फटे से कंबल अंबल को ओढ़ करके और पड़े रहते हैं पेड़ के नीचे। उनके मन में बड़ी दया आई। ध्यान रखना, कभी भी किसी साधु के प्रति दया मत कर बैठना, कृपा करके। साधु से तो श्रद्धा ही की जाती है, साधु के ऊपर दया नहीं की जाती। दया किस पे की जाती, कारुण भावम भाव किसके ऊपर है, करुणा भाव दीन दुखी जीवों पर। वे दीन भी नहीं है, वे दुखी भी नहीं है, वे बहुत समृद्धिशाली हैं और बहुत सुखी जीव हैं। वे भले ही वे बाहर से दीनहीन दिखाई पड़े, इससे ज्यादा गरीब और कौन होगा जिसके पास कपड़े पहनने तक की लत नहीं है, बताइए। लेकिन इससे ज्यादा कौन समृद्ध होगा जिसको कि अब कपड़े की चिंता ही नहीं है। जितनी ज्यादा चिंता है, जितनी ज्यादा जिसकी मांग है, वो उतना ज्यादा गरीब है, ये ध्यान रखना। उतना बड़ा भिखारी है जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड है, बिल्कुल अलग गणित है इसके। इसलिए जिसकी कोई डिमांड नहीं है उससे ज्यादा समृद्ध तो कोई भी नहीं। पर क्या करें, उस राजा को लगता था कि इससे ज्यादा गरीब कोई व्यक्ति नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए, ठंड में पड़ा हुआ है बेचारा। तो राजा ने खबर भेजी कि बाबा से कहना कि अगर ज्यादा ठंड लगती हो तो महल में बहुत व्यवस्थाएं हैं, राजा आपको बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं। और जब भी किसी को आमंत्रण दिया जाए और वो भी एक साधु को, तो किराए के आदमियों से नहीं दिलवाना आमंत्रण। हाँ, सब चीजें इसी में समाहित हैं। हम लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि झुक भी नहीं पाते हैं ठीक से, विनय भी नहीं कर पाते ठीक से। व्यक्ति को भेज दिया कि आ जाओ, बाबा जी मुस्कुरा के रह गए, कुछ नहीं बोले। कहना राजा से कि यहीं सुखी हूं। राजा ने मंत्री को भेजा, मंत्री ने बहुत निवेदन किया, राजा बुलाते हैं। उन्होंने कहा, राजन से कहना कि हमें यही संतोष है, राजा चिंता ना करे। राजा खुद आए। अब जब राजा खुद आए और बहुत जिद की, तो साधु ने कहा कि नहीं मानते तो चलो चलते, अपने को क्या फर्क पड़ता। जैसे पेड़ के नीचे, भवने वा वने वा आवस्ते पुनो विहारे वा भत्ते वा खमने वा ने छदि समणम्मी विगदम्मी, जो समस्त परिग्रह से जन है, वे भोजन करने में या उपवास में, किसी स्थान पर रहने या विहार करने में, जंगल में या कि किसी महल में, हमेशा समान भाव रखते हैं। वे किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखते। चले गए बाबा जी महल में राजा के कहने से, रह गए वहीं पर। और एक इतना बढ़िया कमरा दिखाया राजा ने कि देखो यहां पर सब व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल। साधु ने कहा कि यहां रोकना चाहो तो यहां रुक जाते। राजा के मन में आया कि है तो बहुत होशियार बाबा, अभी तो कहां वहां पड़ा था और अब इतने जल्दी स्वीकार कर लिया। अगर कोई जल्दी से स्वीकार कर ले तो खोट नजर आने लगती है ना। अभी जिसके पीछे बहुत बहुत करुणा आ रही थी, बहुत दया आ रही थी, बहुत श्रद्धा उमड़ रही थी कि पहुंचा हुआ साधु लगता है, अब उसी के बारे में निंदा का भाव आ गया। काहे के साधु हैं, लगता ढोंगी हैं, जरा सा कहा और महल में आ गए। कहां देखा होगा इनने महल, ये क्या जाने महल। और ये कमरा मेरे अपने सोने का कमरा जो कि इतना सजा हुआ है, इसके लिए तैयार हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे बाबा जी, रह जाओ इसमें। भीतर चल रहा है ये भाव, बाहर नहीं कहा। बाहर तो यही कहा कि बाबा जी ये कमरा कैसा लगा, इसमें रुक जाओ। बाबा जी ने कहा कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा। उसमें रुक गए। सोचा था राजा ने कि एक आध दो दिन में कहेंगे कि अब चले जाता हूं, लेकिन कह ही नहीं रहे जाने का। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, 6 महीने हो गए। अब तो एक दिन धीरे से राजा ने कहा कि साधु जी आप में और मुझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है अब तो। साधु जी ने कहा कि उतना ही अभी भी है जितना जब मैं पेड़ के नीचे था, तुम में और मुझ में अंतर अभी भी है। अरे क्या अंतर है, मेरे से भी बढ़िया तो कमरे में है, मेरे से भी बढ़िया खाना पीना, मेरे से बढ़िया सेवा हो रही, सब कुछ तो है आपका, अब मेरे और आप में क्या अंतर है। जैसी मेरी रात गुजरती है वैसी तो आपकी भी गुजरती है, जैसे मेरे दिन गुजरते हैं वैसे आपके भी गुजरते हैं। कहते नहीं राजन, मेरे दिन और रात तुमसे भी ज्यादा सुख से गुजरते हैं। अरे मेरे से ज्यादा सुख कहां से मिल सकता है आपको। अब जो समझ ही नहीं रहा राजा, तो साधु ने कहा कि आओ राजन थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं। उठा लिया कमंडल राजा ने और चल पड़ा पीछे पीछे साधु के। और थोड़ी दूर एक आध किलोमीटर पहुंचने के बाद कहता कि चलो साधु जी अब लौट चले अपने महल में। साधु जी कहते कि थोड़ा और चलो। वो जो नदी दिखती उसके किनारे, देखो कितना सुंदर दृश्य है, चलते हैं। अच्छा नदी तक चले। अब नदी के पार जाने की जिद ठान ली साधु ने कि नदी के पार चलेंगे, बस थोड़ा ही सा रास्ता तो पार करना है, पैर पैर पानी में डूबेंगे और चले जाएंगे उस तरफ। अच्छा चलते हैं, आप नहीं मानते हैं तो वहां तक चले जाते हैं। पर बार बार राजा के मन में आता था कि मेरा महल, मेरा महल कितनी दूर रह गया है, इतने दूर लौटना पड़ेगा मुझे वापिस। अब नदी के उस पार पहुंच करके जब राजा ने फिर कहा कि चलो बाबा जी लौट चलें अब अपना महल, तो मालूम उन्होंने क्या कहा, राजन मेरे से अंतर पूछते थे ना, यही अंतर है। मैं महल में रहता था पर महल मेरे भीतर नहीं था, तुम आज जंगल में खड़े हो तब भी महल तुम्हारे भीतर है, और मेरे भीतर अभी भी महल नहीं है। ना उस समय जब मैं महल में रहता था तब भी मेरे भीतर महल था, मैं उस समय भी उतने ही अकेला था, आज भी उतने ही अकेला हूं। लौट जाओ, तुम्हारा महल तुम्हें बुलाता है पर मुझे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये है अकिंचन को उपलब्ध हो जाना, ये है अपने आप में एकाकी हो जाना, इस तरह की फीलिंग करना कि कहीं भी हो मैं अकेला ही हूं, अपने परिणामों का स्वयं अकेला कर्ता भोक्ता और स्वामी हूं। अगर ऐसा भाव हमारे जीवन में क्रमशः, एकदम तो नहीं आएगा, क्रमशः आता चला जाए, कभी हम इस तरह शांत बैठ करके फील करें, रियलाइज करें, तो थोड़ा सा स्वाद
के साथ इन जन धर्म का ले सकेंगे, इसी भावना के साथ कि यह सब हमारे जीवन में आवे, हम भी इस तरह एकाकी होकर के और सच्चे रास्ते पर विचरण करके अपने आत्मा का अनुभव कर सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर में
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता सा सच्चाधिक दर्शन करने वाला। शिव के नित्य कंटक पथ में विष कंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। संसार पान किया करते सुख दुख दोनों की गलियों में, तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते वो छम छम किया बिना शांति प्यार के मूर्ति मान शिव पद पंक्ति गुरु वर प्रणाम, कमला के ज्ञान के प्रकाश में को आपा पर भाष में को मानु शिव कहानी है, अनुभव बताए देखो जीवों के बताए देखो अपना सताए देखो भव्य और ज्ञानी है, जावन के ज्ञान से तुझे लुकारो तो वाणी मस्तक नमो सदा देश
मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो, मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो, इस मन मंदिर में जगे मन में नित ध्यान धरूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे सावर दे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे सावर दे दे। दर्शन दो दर्शन दो
दर्शन दो, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं,
तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं,
आ दर्श दिखा दे गुरुदेव, निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं,
तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं,
सिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं।
Thank you.